परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद निभाए ग्रह सभा चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रह शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। मामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौरताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जातो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ अष्टम स्कंध अध्याय एक ब्रह्मांड के प्रशासक मनु श्लोक संख्या 14 अथ अग्रे ऋषयः कर्माणि इहन्ते अकर्म हेतवे इह मानः हि पुरुषः प्रायः अनिहां प्रपद्यते। अथाग्रे ऋषय कर्माणि इहन्ते अकर्म हेतवे इह मानो हि पुरुषः प्रायो अनिहं प्रपद्यते। अथाग्रे ऋषय कर्माणि इहन्ते अकर्म हेतवे इह मानो हि पुरुषः प्रायो अनिहं प्रपद्यते। अथाग्रे ऋषयः कर्माणि इहन्ते अकर्म हेतवे इह मानो हि पुरुषः प्रायो अनिहं प्रपद्यते। अग्रे प्रारंभ में ऋषय सारे विद्वान ऋषियों या सप्त पुरुषों ने सप्त ऋषि हो गए जो है इसलिए लिखा संत पुरुष पुरुषों या संत पुरुष कर्माणि सकाम कर्म इहन्ते करते है अकर्मा कर्म फल से मुक्ति हे तबे के लिए यह मान ऐसे कार्य में लगे रह कर ही निसंदेह पुरुष पुरुष प्राय सदा ही अनिहाम कर्म से मुक्ति प्रपद्यन्ते प्राप्त करता है। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद अतएव लोगों को कर्मों की ऐसी अवस्था तक पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए जो सकाम फलों से दूषित नहीं होते हैं बड़े बड़े साधु पुरुष सर्वप्रथम लोगों को सकाम कर्म में लगाते हैं, क्योंकि जब तक कोई शास्त्रानुमोदित कर्म को संपन्न करना प्रारंभ नहीं करता तब तक वह मुक्ति की अवस्था को या कर्मफल न उत्पन्न करने वाला कार्य की अवस्था को प्राप्त नहीं करता। तात्पर्य श्रीमद् भगवद्गीता के तीसरे अध्याय के 9 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकायं कर्मबंधन। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में किया गया कर्म करणीय है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक संसार में बांध देता है। सामान्यतया प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक संसार में सुखी होने के लिए कठिन श्रम करने के लिए आकृष्ट होता है, क्योंकि यद्यपि सारे विश्व में सुख के लिए ही विविध कार्यकलाप चल रहा है लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे सकाम कर्म से समस्या ही उत्पन्न होती है। इसलिए सलाह दी गई है कि कर्मठ लोग कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे जिन्हें यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि ऐसा करने से वे लोग क्रमशः भक्ति पथ व भक्ति पद को प्राप्त हो सकेंगे। यज्ञ का अर्थ है भगवान श्री विष्णु जो यज्ञ पुरुष है, यज्ञ के भक्तों के यज्ञों की भोक्ता है, भोक्ता रंग यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही भोक्ता है, इसलिए यदि हम उनको संतुष्ट करने में बात प्रश्न करने के लिए अपने कर्म करना प्रारंभ करें तो हम धीरे धीरे भौतिक कार्य में रुचि खो देंगे। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के मुनियों को की महासभा में घोषित किया, अतः पुंगभीरश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागस सुनिश्चितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। हे धीरश्रेष्ठ, यदि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने नियत कार्य को करते रहने से कोई सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है तो वह है भगवान श्रीहरि को संतुष्ट करना। श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंध के दूसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में वैदिक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ या सन्यासी होने के अपने वर्ग के अनुसार कर्म करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को इस प्रकार कर्म करते हुए पूर्णता की ओर अग्रसर होना चाहिए जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए। संसिद्धि हरितोषणम, कोई बिना कुछ काम किए बैठे रहने से मनुष्य श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता। मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु के आदेश अनुसार कर्म करना चाहिए, तभी वह धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुँचेगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत की पहला स्कंध की 5वें अध्याय की 12 नंबर श्लोक में पुष्टि हुई है, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितं न शोभते ज्ञान अमलं निरंजनम। समस्त वैदिक आकर्षण से मुक्त होने पर भी आत्म साक्षात्कार का ज्ञान अच्छा नहीं लगता यदि वह अच्युत व ईश्वर की घोषणा से विहीन है। ज्ञानी कहते हैं कि मनुष्य कुछ न करता हुआ एकमात्र ब्रह्म का ध्यान करते हुए निष्कर्म ग्रहण करे, किंतु यह तब तक असंभव है जब तक उसे परम ब्रह्म कृष्ण की अनुभूति न हो ले। यदि कृष्ण भावना न हो तो कोई भी कर्म चाहे वह परोपकारी हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, कर्मबंधन को ही उत्पन्न करता है। जब तक मनुष्य कर्मबंधन में फंसा रहता है तब तक उसे विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ता है। जो मनुष्य जीवन की सुविधा को नष्ट कर देते हैं, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता की 6:3 में कर्म योगों की संस्तुति की गई है। आयुरुक्ष और मुनिर योगं कर्म कारणम उच्यते योगारूढस्य तस्यैव समं कारणम उच्यते। जो योग पद्धति में नवजिज्ञासु है उसके लिए कर्म साधन है, किंतु जिसने योगों की प्राप्ति कर ली है उसके लिए सभी भौतिक कर्मों से विराम लेना ही साधन कहलाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थेषु विमूढात्मा मिथ्याचारो सोच्यते। जो इंद्रियों को तथा कर्मेन्द्रिय को रोक लेता है, किंतु जिनका मन इंद्रिय विषय में चिंतन करता रहता है वह निश्चय ही अपने आप को धोखा दे रहा है और वंचक कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 3:6 मनुष्य को ये श्लोक है। मनुष्य को चाहिए कि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने हेतु वह भगवान श्री कृष्ण के लिए गंभीर रूप से कर्म करें। उसे हरिदास ठाकुर जैसे महापुरुष की नकल नहीं करना चाहिए, उतारनी चाहिए और एक जगह बैठ नहीं जाना चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसे अनुकरण को निंदा करते हुए कहा, दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव प्रतिष्ठा रे निर्जन घरे तब हरि नाम केवल कैटव। हे मरे मन तुम कैसे भक्त हो, तुम केवल स्वस्ती प्रतिष्ठा के लिए निर्जन स्थान में बैठ जाते हो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का देखवा करते हो, किंतु यह सब ठगी है। हाल ही में मायापुर में एक अफ्रीकी भक्त ने हरिदास ठाकुर का अनुकरण करना चाहा, किंतु 15 दिन के बाद वह अशांत हो उठा और भाग गया। एकाएक हरिदास ठाकुर का अनुकरण करने का प्रयत्न मत करो, अपने आप को कृष्ण भावना भावित कर्म में लगाओ। इसी से धीरे धीरे मुक्ति की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति। हरे कृष्ण। तो बड़ा पर्वत है, बहुत सुंदर है। अच्छा, ज्ञानातिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नमिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी सप्तम स्कंद भागवत कालोचना संपूर्ण हो गया है, अभी अष्टम स्कंद का प्रारंभ हो गया। सप्तम स्कंद में हम पढ़े थे कर्म वासना उति है, भागवत की 10 विषय वस्तु। अतः स्वर्ग विसर्गश्च पोषण स्थान मुतय मनोन्तर ईशान कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। तो जब उति बा विषय वस्तु उति समाप्त हो गया, कर्म वासना सत्कर्म वासना असत्कर्म वासना इसका चर्चा हो गई सप्तम स्कंद में। अभी अष्टम स्कंद में कौन सा टॉपिक आ गया, मनवंतर ईशानु कथा, साथ साथ है मनु की शासन, साथ साथ प्रत्येक मनु की शासन काल में भी भगवान भी अवतीर्ण मनवंतर अवतार है। 6 प्रकार के अवतार में एक अवतार है क्या, मनवंतर अवतार। भगवान भी अवतरित होते हैं श्री भगवान की इस अनुकथा, भगवान तथा उनकी भक्तों की विचार जो कथाएं हैं ये भी चर्चा हुई है। इसमें गजेंद्र मुख्य का कथा आएगी, बामन देव की कथा आएगी, कई कई लड़ाएं सब हैं वर्णन है। इसलिए मनोन्तर की प्रारंभ से ये पहला अध्याय में मनोन्तर के ब्रह्मांड के प्रशासक मनु की चर्चा हुई है। ब्रह्मा जी का एक दिन को क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। ये कौन सा कल्प चल रहा है? वराह कल्प। यज्ञ करते बोलते ना वराह कल्पे भारत में जम्बूद्वीपे भारत वर्षे ऐसा करते हैं। तो इसलिए वराह कल्प में चल रहा है। वराह कल्प में ये मनु की एक नहीं ब्रह्मा की एक दिन में कितने मनु शासन करते हैं? 14 मनु शासन करते हैं। सबसे पहला मनु कौन है? स्वयंभू मनु। ये स्वयंभू मनु के शासन काल का वर्णन पहले हो चुका है, इसलिए इस मनु में इसमें आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक स्वयंभू का चर्चा चल रहा है। स्वयंभू मनु के तीन पुत्री हैं, कौन कौन? आकुति, प्रसूति, देवहूति। स्वयंभू मनु मनुष्य जाति का सबसे पहला मनुष्य जाति के पिता माने जाते हैं। मनुष्य देहधारी जो मनुष्य जो हम जो ये पहला मनुष्य ब्रह्मा जो सृष्टि किए थे वो है स्वयंभू मनु, और पहला स्त्री जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि किए वो है शतरूपा। है जैसे मनुष्य का शरीर ऐसे शरीर धारण करके जो व्यक्ति पहले दोनों प्रकट हुए वो है मनु, स्वयंभू मनु और शतरूपा। इसके बाद मनुष्य जाति का बड़ा फिर वृद्धि होने लगा, तो मनुष्य देहधारी जीवों की वृद्धि होने लगा। तो स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, कौन कौन? उत्तनपाद और प्रियव्रत। दोनों में बड़े कौन था? उत्तनपाद ने सॉरी प्रियव्रत बड़े थे, लेकिन प्रियव्रत के गुरु कौन थे? नारद मुनि। इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया, पिताजी को मना कर दिया, मेरे शासन बसन में मैंने वो तो बाबा टाइप का था, यहाँ जाके जंगल में तपस्या करने लगे, तो इसलिए वो उत्तनपाद को बढ़ा दिए थे सिंहासन में। अब उत्तनपाद भी आस्ते आस्ते वो हैं उनका भी काल समाप्त हुआ, तो फिर ये फिर इसको बुलाया, किसको? प्रियव्रत को आने के लिए। बोले तुम आके शासन करो, मैं अभी कहाँ जाऊँगा? वानप्रस्थ लेके जाना है मुझे, मैं स्वयंभू मनु। तो इसलिए जब प्रियव्रत को कहे, प्रियव्रत कहा कि मेरे को जरूरत नहीं, मैंने ये सब जमला में नहीं फंसने वाला हूँ, मैं तो गुरु की बात सुनूंगा। गुरु कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि का क्या एडवाइस है? पूरा लाइफ ब्रह्मचर्य रहो, संसार में मत फंसो। नारद जी जिसको देखते ही उपदेश देते। तो इसलिए बोले मैं तो नहीं फंसने वाला हूँ, मेरे गुरु जी मना किए। स्वयंभू मनु हैं, वही मनु भी एक महाजन है, 12 महाजन में से एक महाजन नारद भी है, ये भी एक महाजन है, कौन? मनु है। तो इसलिए मनु बड़ा परेशान होकर सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी तीसरे महाजन है जो कि दोनों का पिताजी है, स्वयंभू मनु और नारद जी का। इसलिए ब्रह्मा जी ने आके कहे कि देखिए ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं भगवान विष्णु से पूछ के उनकी डिसीजन बोल रहा हूँ आप लोग को। ये भगवान विष्णु के भगवान का नारायण की ये इच्छा है कि अभी स्वयं ने कौन महाराज प्रियव्रत शासन करेंगे और स्वयंभू मनु कहाँ जाएंगे? वानप्रस्थ में, जंगल में जाएंगे। तो इसलिए अभी स्वयंभू मनु रिटायर्ड हो रहे हैं, रिटायर्ड होके कहाँ जाने चाहते हैं? जंगल में जाना चाहते हैं स्वयंभू मनु, जंगल में अपने पत्नी के साथ। वानप्रस्थ में पत्नी भी साथ में रह सकती है। आजकल कोई नहीं है वानप्रस्थ है, कितने साल उम्र में वानप्रस्थ? कितने साल उम्र में? 50 साल के बाद। अभी कॉलम वो सत्यजुग था तो परमायु भी उनका बड़ा ज़्यादा था, वो लंबा। लेकिन यदि ऐसे ही एवरेज पकड़ा जाता है, लाइफ टेस्ट प्लान का आधा 50 साल हो गया वानप्रस्थ कलि युग में। लेकिन 50 साल में कोई वानप्रस्थ जाएगा? घर बार छोड़ जाता है, हैं जाएगा? अरे 50 साल से वानप्रस्थ, 75 साल में अभी यदि किसको भेज दिया लड़का लड़का माने लड़का के पिताजी माताजी को, बोला अभी अब बोलेगा देखो फिर छोटे बच्चा छोटा से बना के आया भाई, इसको पालन करके पोषण करके लेके आया, इतना बड़ा बनाया, अभी मुझे भेज रहा है, भेज दिया बाहर, हैं? लेकिन अन्य युग में उसे वॉल्यूंटरली चले जाते थे, ये जाने के लिए और तत्पर होते थे, हैं स्वयं मनु जाने, स्वयं जाएंगे वानप्रस्थ, इसीलिए वो तत्पर स्वयं स्वेच्छा से हैं निकल गए घर से, निकाल कर जाकर विंध्या से पता गया पिछले श्लोक में नहीं, विंध्याचल वो पर्वत आसपास में जाके वहां तपस्या करने लगे। कौन सा नदी के किनारे? तो जाकर कठोर तपस्या करने लगे नदी, वो नदी के किनारे कैसे कर तपस्या किए, एक पैर में खड़ा होके दोनों हाथ को उर्ध्व को करके एक पैर में खड़े थे, एक पैर में, दो पैर में नहीं, एक पैर में खड़े होकर उर्ध्व को पैर रख के ने उर्ध्व को हाथ रख के और उन्होंने कुछ मंत्र उच्चारण करने लगे, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे लेकिन अंतकरण में सोच रहे थे, जैसे सोचना जो भावना है उनकी था, जैसे चिंतन कर रहे थे वही चिंता, वो जो क्या क्या सोच रहे थे, क्या बोल रहे थे, वो कई कहा जाए कि उपदेश के उपनिषदों की मंत्र कुछ उच्चारण कर रहे थे, लेकिन उनकी भावार्थ क्या है, उस मंत्रों की भावार्थ क्या है, ये 9 नंबर श्लोक से लेकर 16 नंबर श्लोक तक, 9 से 16 कितना श्लोक है गया, 8 श्लोक है ये बता गया, ये जो श्लोक है, जो श्लोक है उसको प्रकृति में कौन बोल रहा है, स्वयंभू मनु आवृत्ति कर रहे हैं, अंत है एक पैर में खड़ा होकर दोनों हाथ को ऊपर करके वो जो चिंतन कर रहे थे, जो जो श्लोक से चिंतन कर रहे हैं वही श्लोकों के यहाँ वर्णन की गई है। ये मनुरुवाच है, ये श्लोक जो प्रारंभ हुई किसका उवाच है, मनुवाच, स्वयं वो मनु ये श्लोकों को कह रहे हैं, स्वयं स्वयं मनु ही मनुष्य जीवन का, मनुष्य जाति का पिताजी है, मनुष्य को कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे इनके जीवन का जीवन काल को निर्वाह करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने और भी एक गाइड बुक लिखा है, क्या नाम उसका, मनु संहिता है, प्रभुपाद जी ने कहे कि मनु संहिता के आधार पर मनुष्य को, मनुष्य का आचरण होना चाहिए है। तो इसलिए इन्होंने जो बोल रहे हैं ये सभी हमारे लिए है उचित है, इस मार्ग को अनुसरण करना, हम अनुकरण नहीं कर सकते, मनु का अनुकरण कर सकते हो, एक पैर में जो खड़ा होकर तपस्या करेंगे ऊपर को नहीं, लेकिन उनके आदेश जो है, जब वो उपदेश दे रहे हैं, ये 9 श्लोकों में एक प्रकार के उनकी उपदेश है, किसका, स्वयं मनु का है, तो उसको हमें जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए स्वयं मनु ये श्लोकों की नहीं जो आवृत्ति कर रहे हैं, आज के भी श्लोक है जो 14 नंबर श्लोक है, अथाग्रे ऋषय कर अथा है ऋषय कर्माणि इहंते अकर्म हेतवे इह मानो ही पुरुष प्रायो अनिहं प्रपद्यते, अतएव लोगों को कर्म की ही, कर्म की ऐसी अवस्था तक पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए जो सकाम फलों से दूषित नहीं होते हैं, बड़े बड़े साधु पुरुष सर्वप्रथम लोगों को सकाम कर्म में लगाते हैं, क्योंकि जब तक कोई शास्त्र अनुमोदित कर्म को संपन्न करना प्रारंभ नहीं करता तब तक वह मुक्ति की अवस्था को या कर्मफल न उत्पन्न करने वाला कार्य की अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। अथाग्रे ऋषय कर्माणी, जो बड़े बड़े संत पुरुष ऋषय, जो लोग प्रकृति में आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहता है, आत्मसाक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उसको प्रारंभ से कर्म को त्यागने के लिए नहीं कहते हैं, निष्कर्म पूरा निष्कर्म जीवन सब छोड़ छाड़ के केवल भगवान के ध्यान करना, भगवान के नाम जपना, भगवान को ही दिन रात भगवान की चिंतन करना, ये से न करके प्रारंभ से बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग व संत लोग इनको कर्म करने में इनके पहले प्रेरणा देते हैं, ऐसा ही क्योंकि वर्णाश्रम सिस्टम भी है, प्रभुपाद जी कहते थे कि स्कंद का स्कंद की स्कंद प्रकृति में अधूरा रह जाएगा जब भी हम वर्णाश्रम सिस्टम को सही सही से इसमें प्रणयन नहीं कर पाएंगे है, कि सभी लोग ब्रह्मचारी नहीं है, मेजोरिटी ग्रस्त है, ग्रस्तों को वर्णाश्रम पालन करने के लिए कहा जाता है, गृहस्थ जीवन में नहीं से वर्णाश्रम में सबसे 25 साल तक ब्रह्मचारी है, इसके बाद क्या गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके यदि वो कर्म नहीं करेगा तुरंत सोचेगा ब्रह्मचारी, सभी ब्रह्मचारी सोचेंगे हम वानप्रस्थ सन्यासी बन जाएंगे डायरेक्ट नहीं, इसलिए ये आश्रम बीच में है, कौन सा गृहस्थ है, गृहस्थ गृहस्थ बन के क्या करना, कर्म करना पड़ेगा ना, गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा है। अर्थ से अर्थ चाहिए ना गृहस्थ को है, धर्म अर्थ काम इसके बाद वो मुख्य की चिंता करेगा है। तो ये सोचा ही है ना पहले, क्या धर्म चाहिए, धर्म करना पड़ेगा थोड़ा है, कर्म करने का धर्म अर्थ, धर्म अर्थ संग्रह, फिर काम इंद्रिय तृप्ति, फिर फ्रस्ट्रेशन होके अंत में जाएगा है। तो लेकिन इसलिए क्रमिक ये जो क्रम है, इसलिए मुनि ऋषि लोग ने तुरंत किसको छोड़ने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाने के लिए नहीं बोलते हैं है। जो बुद्धिमान प्रकृति में, गीता में भी तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, जो लोग प्रकृति में कर्म में लगे हुए हैं उनको तुरंत ही कर्म त्याग करने के लिए नहीं कहना चाहिए, बुद्धिमानी नहीं है उनको। उसी कर्म करते 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 उसी कर्म को कैसे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए, उसी के लिए इनको आस्ते आस्ते प्रशिक्षण करना चाहिए। पहले कर्म को हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसी कर्म को कैसे कृष्ण भावना में जोड़ा जाए है, उस शिक्षा प्राप्त करना चाहिए है। इसीलिए प्रभुपाद जी कि आपने अनुभूति बोल रहे कि जब माया के तात्पर्य अंत में कह रही, माया पर मैं आया था कहाँ से, अफ्रीका से आके हरिदास ठाकुर को इमिटेशन करता था, दिन रात हरे कृष्ण 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 कर रहा था, कुछ करने वाला नहीं था कुछ भी, लेकिन वो उसको मना करने पर भी ऐसा नहीं करना, कुछ सेवा करो, वो करने खाली दिन रात बैठ के हरे कृष्ण जप रहा था। लेकिन 15 दिन में प्रभुपाद लग रही, 15 दिन में क्या हो गया, गायब हो गया और देखा नहीं, उसका और देखा कहीं नहीं मिला। तो इस प्रकार का अर्थ प्रभुपाद ने और एग्जाम्पल अन्यत्र, एक एक व्यक्ति ने अमेरिकन भक्त उसको डॉक्टर बोला तुम्हारा कैंसर हो गया है, 6 महीना में तुम्हारा डेथ हो जाएगा, 6 मंथ। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के पास आके रोने लगा जोर जोर से, प्रभुपाद जी मैंने मेरा 6 महीना में डेथ हो जाएगा, बहुत सीरियस हो गया, रोने लगा। प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है इतना रोना बंद करो, मैं तुमको इसका प्रतिकार बताता हूँ लेकिन तुम इसको फॉलो करना स्ट्रिक्टली। तो प्रभुपाद जी ने इसको बोले कि तुम मायापुर जाओ और 3 बार गंगा में स्नान करना, सुबह दोपहर शाम गंगा में 3 बार स्नान करना, और तुमको डेली राधा माधव का राजभोग मैं व्यवस्था कर दूंगा, हर दिन तुमको राधा माधव का राजभोग मिलेगा, एक ही टाइम, खाना कितना टाइम, एक ही टाइम राधा माधव का राजभोग, और जब भी कुछ पीना है तो केवल गंगा पानी पीना, दूसरा जल नहीं पीना, सिर्फ गंगा में स्नान करना, गंगा पानी पीना, राधा माधव महाप्रसाद एक बार खा के रहना, और दिन रात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, महामंत्र को जपा करते रहना। तो गया, वो आ गया मायापुर, मायापुर आके जैसे प्रभुपाद जी कहे थे सीरियस था ना, मर जाएगा अभी, 6 महीना ऐसा किया, 6 महीना चला गया कुछ नहीं हुआ, 1 साल बीत गया कुछ भी नहीं हुआ, पता और तो अच्छा लग रहा है उसको, सब जो पेन फेन हो रहा था सब ऐसे सब चला गया। 1 साल 1.5 साल फिर 2 साल बीत गया, तो उसको तो पूरा एकदम हृष्ट पुष्ट हो रहा, बहुत अच्छा स्वस्थ लगा। तो प्रभुपाद जी आए थे, बोला प्रभुपाद मेरे को तो ये डॉक्टर बोला था 6 महीने में बच जाऊंगा, तो 2 साल हो गया, मैं बोल रहा सोच रहा हूँ थोड़ा जाके दोबारा क्या करूँगा, मेडिकल चेकअप करूँगा डॉक्टर से। प्रभुपाद जी मना किए, दिस इज द सिचुएशन बिकॉज दिस इज, ये गुरु का आशीर्वाद और धाम का प्रभाव और होली नेम का प्रभाव, गंगा का गंगा धाम, इसलिए ये गुरु आशीर्वाद मेरा आशीर्वाद से तुम्हें ऐसी स्थिति प्राप्त हुआ, अभी तुमको संपूर्ण सेवा में लगना चाहिए, किसके सेवा में, राधा माधव की सेवा में है। माराथन आ गया, चलो जाओ मेरा किताब को डिस्ट्रीब्यूशन करो है। तो बोला ठीक है मैं थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। प्रभुपाद मना किए नहीं जाना डॉक्टर के पास, लेकिन भाग गया प्रभुपाद, चला गया मायापुर से, भाग गया अमेरिका, जाके डॉक्टर को चेकअप किया तो कुछ है नहीं सब, बोले वो डॉक्टर भी आश्चर्य हो गया, अरे कैसे कैंसर कैसे खत्म हो गया है। तो बड़ा आश्चर्य जब देखा कि कैंसर और शरीर में नहीं, चला गया शरीर से और वापस नहीं आया इस कदम है। बस कहा जाते कि उस व्यक्ति को प्रभुपाद ने बाबा जी दिखा दिया था, एक ही आदमी को है, जैसा सुना इंद्रपुर से, एक ही व्यक्ति को केवल लेकिन इसके बाद प्रभुपाद ने कभी किसको ऐसे एडवाइस नहीं दिया है। तो इसलिए ठग है ये संसार में जो प्रकृति में स्थिति में नहीं है, इसको आर्टिफिशियली उस स्तर को उसी स्तर में पाया उसको कहा जाएगा वो थोड़ी कर पाएगा, वो तो अपने फिर इंद्रिय तृप्ति में फंस जाएगा है। इसलिए प्रारंभ में लोगों को इंद्रिय तृप्ति करके उसमें फ्रस्ट्रेटेड होके फिर है फिर भक्ति में संलग्न हो जाएगा तो फिर वो क्या है फिर छोड़ेगा नहीं, फिर उसकी पतित अवस्था नहीं आएगा है। इमिटेशन नहीं करना चाहिए महाभागवत वैष्णव को, हर आदमी अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद ने कह रहे हैं विशेष रूप में उन्होंने अपने गुरु महाराज की उक्ति को कोट किया, किसका किसका है हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इन्होंने पहले कि राधा कुंड हमारा जो संप्रदाय में भजन करने वाले कहाँ से इकट्ठे होते हैं, राधा कुंड में दिन रात बैठ के क्या करते हैं हरे कृष्ण जपते हैं जो भी करते हैं वो, लेकिन राधा कुंड में कई बैंक है, बैंक लोग बैंक में फिर किसका अकाउंट होता है उसे बाबा जी रहते हैं, तो बैंक में सब बाबा जी लोग के अकाउंट है, करोड़ों रुपए के अकाउंट है बाबा जी लोग का है। वो तो कहते कि हम दास गोस्वामी के फॉलोअर हैं, दास गोस्वामी कौन है रघुनाथ दास, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी का एक नुआ पैसा स्वीकार नहीं किया था, दो दिन दो रात बीत जाता था एक दिन एक ठोले में क्या छाछ पी के है, उनके पास में कोई बैंक बैलेंस रखते थे वो, उसके पिताजी कितना पैसा था कभी स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन जो भी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे संत थे जो कि भारत में पूरा भारतवर्ष में उन दिनों में भारत में 10 कार था, काउंट करके 10 कार टाटा बिरला जो बड़े बड़े कंपनी के कुछ लोग का था, उनमें से एक कार था किसका डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। उन्होंने कार चढ़ के आए कहां राधा कुंड कार में आए, और जहां जाता थे भक्तिराम सरस्वती ठाकुर इतने प्रसिद्ध थे सर पेपर में न्यूज पेपर में सब न्यूज में आ जाता था कि आज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन जगह में आज भ्रमण कर आज इसी इसी जगह में भ्रमण करेंगे। तो इसलिए राधा कुंड की बाबा जी लोग बोले कि अच्छा वो भक्ति में लौट का लड़का हम सुने बहुत बड़ा प्रचारक है, बहुत अच्छा गौड़िया वैष्णव का प्रचार कर रहा है गौड़िया धर्म का, तुम देखने के लिए सब आए हैं सारे बाबा जी लोग स्वागत में आके खड़े हुए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जान बुझ कर इनको शिक्षा देने के लिए कैसा पहन के आए थे वस्त्र, पेंट शर्ट पहने थे, सूट पहने थे, पेंट कुर्ता पेंट शर्ट और कोट पहने थे, टाई बांधे थे, टाई भी बांधे थे, पैर में बूट था जूता पैर में बूट था। उन दिनों में राधा कुंड के किनारे कोई जूता के साथ उतरना हिम्मत नहीं करता था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसे कार में बैठे के आए और उतरे राधा कुंड में, ये जो उतरे इनको ऐसे ड्रेस में देखकर पर क्या है पेंट शर्ट ये सब है टाई बंधा हुआ चश्मा भी, तो चश्मा तो लगाते ही है चश्मा है और ये टोपी और ऐसे सब ये अद्भुत ड्रेस है। उनको देख के कुछ लोग सोचा कि ये नहीं ये ड्राइवर होगा कुछ हो। वो पूछ रहे थे उनको ही पूछ रहे थे वो जो भक्ति सिद्धांत जो है ना भक्ति जो कि भक्ति विनोद का लड़का है ना बिमला प्रसाद का तो उसका नाम है और वो उसके बाप के नाम केदारनाथ है वो कहाँ है बोले आई एम बोले मैं ही हूँ बंगला में कहते थे बंगाली वो तो बंगाली म्यामी है मैं इधर आया हूँ तुम लोग को सिखाने के लिए पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम। कौन कहा इस बात को है चैतन्य महाप्रभु ने इस वाणी को भविष्यवाणी किया है हाँ। ये पृथ्वी में जितने भी गांव शहर सब है पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम जितने नगर का सब है सर्वत्र सभी जगह में सभी गांव में शहर में क्या होगा हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होगा। ये भविष्य चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी करके गए हैं। भक्ति सरस्वती ठाकुर भाई कि आप लोग सब ये कपड़े पहन के हम नहीं ये क्या ये हम बड़ी कुटिया बना के बैठ गए हो दुष्ट मन तुम्हें किसेरा वैष्णव कैसे वैष्णव हो। ये चैतन्य महाप्रभु वाणी का कौन सार्थक करेगा तुमको सिद्धि तो तभी प्राप्त होगा जब चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करोगे। हाँ, तुम किस लिए बाबा बने हो? महाप्रभु को प्रसन्न करने। गुरु कृष्ण को प्रसन्न किए बिना तुम सिद्धि प्राप्त कर लोगे? हाँ, बोले चैतन्य महाप्रभु के वाणी को कौन सार्थक करेगा? पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, ये कहा कौन प्रचार करेगा? इसलिए कहे कि दुष्टमान तुम्हें किसरा वैष्णव, प्रतिष्ठारा भरे निर्जन घरे तुम हरिनाम केवल बैठो। हाँ, कुटिया झुपड़ी बनाकर बैठ गए इधर, आंठू तक कपड़ा ऐसे बन के, और यहाँ बैठ गए हरे कृष्ण कर रहे हो। हाँ, तो इसके अंदर में इसे करने से आप चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करोगे? है ले इनको डांटे थे भूत किसको? बाबा लोगों को, बाबा जी लोगों को। इसलिए आज तक भी बाबा जी लोग भक्ति सिंह नाम भक्ति सिंह ठाकुर का नाम सुनने से चिढ़ते हैं। भक्ति सिंह ठाकुर शाम को फिर लेकिन ठीक है, जो गए सब कुछ लाए तो गए, बोले शाम को कक्षा होगा, शाम को आना सब कक्षा होगा। हैं, सुने कुछ रसों को तो बोलेंगे राधा कृष्ण के लड़ा सब कुछ सुनाएंगे हमको अच्छे से। हैं, सुनेंगे सब, आ गए बाबू जी इकट्ठे हो गए। भक्तियाँ सरस्वती ठाकुर बैठ के ईश्व परिषद खोले, जैसे नहीं भक्त पढ़ाते हैं, ईश्व परिषद खोल के ईशाभाष्यम इदम सर्वम जत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कश्यचित धनम। है, ये संसार में जितनी भी संपत्ति है ये सारे किसका है? ईश्वर का है। और भगवान ने जिसको जितना है अपने हिस्सा के रूप में, जितने शेयर के रूप में दिया है, वो उसी में संतोष रहना चाहिए। ये जानते हुए कि ये संपत्ति मेरा नहीं है, किसी दूसरे का है, तो उसके प्रति लोभ नहीं करना, उसका व्याख्या करने लगे। हैं, बाबा जी लोग सब एक दूसरे को देखने लगे, क्या हम नया वक्त कोर्स कर रहे, क्या हो रहा है इधर? हैं, उसे रसो तब तो हमको सुनना था राधा कृष्ण के कुछ अंतरंग लड़ाएं, ये किया ईश्वर परिषद। भक्ति ठाकुर समझ बोले यस यू आर फिट फॉर दिस, आप लोग किसी के लिए योग्य हो, पहले सीखो ABCD। हैं, तो कहे थे जो भविष्यवाणी अभी हम सार्थक देख रहे, कुछ लोग कहे इसलिए कमेंट करते कि भले वही जो भविष्यवाणी किए थे कि वे बहुत बड़े ज्योतिष ज्योतिष थे, क्यों भक्त वो ईश्वर परिषद क्यों बैठ के बाबा जी सुनाए कि संपत्ति स्वभाव सब ईश्वर का है और सबका ये सभी संपत्ति भगवान की सेवा में उपयोग होना चाहिए, जिसको भगवान ने जितना दिया उसे संतोष रहना चाहिए। हैं, ऐसा क्यों कहे? क्योंकि जानते थे कि बाबा जी भविष्य में क्या करेंगे, रघुनाथ दास को सबके इमिटेशन करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते इमिटेशन मत करो। हैं, अभी देखो बैंक बैलेंस को कहाँ से आया, बाबा जी को रखा कोई स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं है, तो भजन आनंद ही है, भजन करेंगे। हैं, भजन करने के लिए रघुनाथ दास को सन के आचरण करो, दो दिन में एक दुना का छाछ पी के बस दिन रात भजन करते थे। हैं, तो इसीलिए प्रभुपाद जी भाई ये श्लोक भी कह रहा है कि हमें इनको यो मान ही पुरुष प्राय अनिह प्रपद्य, अनिह अर्थात जो अनिहम कर्म से मुक्ति, जो निष्कर्म से मुक्ति बने, कर्म मुक्त हो सोचकर, मतलब हमको कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ भजन करेंगे। तो प्रारंभ से इनको अकर्म का अभ्यास नहीं करना चाहिए, कुछ कर्म नहीं करना हमको, बस सिर्फ हरे कृष्ण पर बैठकर हरिदास ठाकुर के इमिटेशन करना, या इसे जैसे ये संभव, ये ठीक नहीं है। एकांत में बैठकर कुटिया बना के बस नाम लेते रहना दिन रात, है, हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए प्रारंभ से हमको गुरु के निर्देशन के आधार पर कर्म करना आवश्यक है। तो इमिटेशन करोगे महाभागवत का, उसका परिणाम बहुत क्या है, गलत होता है। हरिदास ठाकुर चैतन्य चैतन्य वर्णन है, एक बार हरिदास ठाकुर जा रहे थे मार्ग पर, जा रहे थे वहाँ बाजू में एक सांप खड़ाने वाला था, वो डिप 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 बजा कर ऐसे सांप खड़ा रहा था। तो जब गए हरिदास ठाकुर, वो तो क्या हो रहा था, इनको वाद्य जो म्यूजिक सुना ऐसे सुना, उसी के साथ ताल लगाए कि नृत्य जोर जोर से हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करते हुए नाचने लगे। बस हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करके नाचने लगे। आज जो लोग सो जा रहे थे, हजार हजार लोग दंडवत करके पड़े हैं। बंगाल में साधु तो बहुत दंडवत लगाते हैं, साधु को देखें, बस साधु देखें कि हरिदास ठाकुर ऐसे उन्मत्त नृत्य कर रहे हैं, उनका अंक से अश्रु की धारा बह रहा है और पूरे सभी लोग, क्योंकि जो महाभागवत वैष्णव होते हैं, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्मृति, इसलिए नाच रहे थे। तो बाजू में एक तगड़ा लड़का था, एक यंग लड़का था, बहुत अच्छा से हटा कट्टा तगड़ा था। तो बोला ये तो क्या ना, ये तो नाच रहा ऐसे ही है, खाना पीने डिग डिग वाला है, मैं तो पता हटा कट्टा, मैं जो नाचूंगा तो इससे कितने अच्छा नाच सकता हूँ, और लोग तो इसको जैसे हजार लोग प्रणाम करते मुझे ही प्रणाम करेंगे सब। ये सोचकर इनके बाजू में भिड़ गया, किसका बाजू में, हरिदास ठाकुर के बाजू में खड़ा कर, वो भी जोर जोर से नाच रहा था, लेकिन हरे कृष्ण मात्र जो हरिदास ठाकुर गा रहे थे इसकी, ये तो थोड़ा थोड़ा कभी इमिटेशन करता था। ये नाचते नाचते वो सांप का, सांप खड़ाने वाला पेड़ी था, इसका पैर जा जाए बार बार उसमें लगता था, सांप खड़ा इसको सत्र कराए, लेकिन ये हटता नहीं था। एक बार देखे पास में आके लगाया उसके पास, हाथ में डंडा था, लगाया एक डंडा जोर से लगा वो जब लगाया एक डंडा, दूसरा देख रहे थे, बोले कि क्यों इसको मारा है, जरूर कुछ गलती किया होगा, है वो आके एक थप्पड़ लगाया। तीसरा कहा कि इसको क्यों थप्पड़ लगा, वो आके एक थप्पड़ लगाया, जरूर जरूर कुछ किया होगा। चौथा के लगाया, ऐसे हजार लोग आकर थप्पड़ लगाए, पारे इसको पूरा बेहोशों के नीचे गिरा है। तो महाभागवत वैष्णव को जब इमिटेशन करोगे उसका हालत बड़ा, उसका परिणाम बड़ा खतरनाक होता है, है? इसलिए सलाह दी जाती है कि प्रारंभ से किसी को कर्म त्याग करने के लिए मत बोलो, है? जो जो साधुजन है, संत पुरुष है, वो कभी किसी व्यक्ति को प्रारंभ से कर्म त्याग नहीं कहते हैं, है? कर्म करते करते रहे वो, लेकिन उसी कर्म को कैसे भगवान की तरफ मुड़ेगा उसी के लिए इसको प्रेरित करना सिखाना चाहिए, आस्ते 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 उसको सिखाना चाहिए। कर्म तो करना अनिवार्य है, हाँ, कर्म न करके कोई भी नहीं रह सकता संसार में, भगवान कहते कि कोई नहीं रह सकता संसार में। अर्जुन कहते कि देखो मैं स्वयं त्रिलोकीनाथ हूँ, फिर भी सारथी बनकर तेरे रथ में बैठा हूँ, मुझे भी कर्म करना पड़ता है, कर्म सबको करना पड़ेगा, हाँ। इसलिए संसार में सभी रजोगुण की मनुष्य जो नहीं विशेष रूप में रजोगुण में है, और रजोगुण की प्रवृत्ति है कर्म करना, है? तो कर्म करने कर्म का कर्म करना है, लेकिन संत पुरुष का ये कर्तव्य है कि किसके लिए कैसे कर्म करना वो सिखाना। इसको कर्म किसे करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए, वही कर्म वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, लेकिन उसी कर्म यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा तो फिर वो कर्म मन से मुक्त हो जाएगा, है? कुछ बिजनेस करने का प्रवृत्ति है, बिजनेस करेगा, है? पिछले क्लास में आप सुन रहे थे गौरांग प्रभु के क्लास में, को बोल रहे थे ना वो बिजनेस मैन प्रभुपा जी को, क्या बोल रहा था, बंगाली बंगाली था ना कलकत्ता में, बोल रहा था इतना कहाँ से कमाए, कैसे किए इतना पैसा, है? इतने साल में 10 साल आपका इतना कैसे हो गया, है? प्रभुपा जी उसको बताते मैं तो कुछ नहीं किया, बस अमेरिका में गया टॉमस को इंस्पायर में खड़ा हो गया, बस सिर्फ ताली बजाते हुए हरे कृष्ण गाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ला, ला, लेकिन वो सैटिस्फाई नहीं हुआ, नहीं इतना इतना लाए कहाँ से, हैं? आपका इतना फंड कहाँ से आ गया, लोग कहते कि 40 रुपये लेके आप गए थे, अभी तो 400 करोड़ से भी अधिक हो गया आपका, ये इतना बिजनेसमैन कोई देखा नहीं ऐसे कमाने का, हैं? वो बोला तो मैं पूरा फुल टाइम बिजनेस में लगा, आप तो कैसे कमाए कहाँ, बार बार प्रभुपाद जी को इंगित किया कैसे कमाए कहाँ से लाए हैं? लेकिन बिजनेस में प्रभुपाद जी देखो कर्म करते लेकिन भगवान के प्रचार में लगे बस, हैं? प्रभुपाद जी और क्या किए, बस वही प्रचार भगवान की प्रचार किए हैं, बोले समझा। तो इसलिए जो कर्म कर रहा है तो उसको केवल सिखाओ, वो कर्म इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करके किसके लिए करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए, हैं? हाँ बिजनेस घर में करोगे जो कोई मेंबर से कोई किसको पैसा कलेक्शन करने का आदत ने इसका हैबिट है वो किसी ना किसी को बोलेगा पैठे झूठ मूठ बोल के किसी ना किसी जब से निकालने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन यदि आके इस्कन में वही काम करें भगवान के लिए पैसा कलेक्शन कर रहा लाइफ मेंबर में जुट गया किसको बड़ा पटा ही कैसे भी पैसा निकाल के लेकिन लाके किसके खान डाल दे रहा है डिपोजिट कर रहा है। ब्रह्म या अध्याय कर्मणी संगम त्यक्त्वा करोति यः स्वपापेन न लिप्यते पद्मपत्रम् इवाम्बसा। भगवान कहते हैं 5वें अध्याय गीता में कमल की पत्ता में जैसे पानी टपकने से रह नहीं सकता तुरंत नीचे गिर जाएगा उसे पर टपक जाएगा। तो इसीलिए यदि भगवान के उद्देश्य में जो कर्म कर रहा है कुछ कर रहा है तो उसका स्वभाव है क्या करेगा, वो स्वभाव नहीं है कर्म है, प्रत्येक को अपने स्वभाव के आधार पर कर्म करना पड़ता है। लेकिन कर्म फल में आशा मत रखो, कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फलेशु कदाचन, कल को भगवान को दे दो है। प्रारंभ से लोगों को ऐसा ही सिखाना जरूरी है, कर्म करो, कर्म का अपने ऐसे ही। वही बिजनेस करता है, वही बिजनेस लोग को सोचते कि अरे हम भी मैगजीन बेचते हैं और ये न्यूज पेपर बेचते हैं, हम भी कुछ नॉवेल किताब भी बेचते हैं, स्टेशन में घुमाते गाड़ी लेके, अरे तुम लोग ये क्या है किताब लेके बैग में घूमते हो, हाँ क्या तुम लोग हमसे क्या बड़ा बड़ा कैसे बन गया, तुम भी तो बिजनेस कर रहे हो। लेकिन जानते हैं, जानते हैं कि ये बिजनेस किसके लिए है, कृष्ण के लिए है। और वो बिजनेस कर रहा है किसके लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। हम लोगों को गीता दे रहे, वो नेपथ्य दे रहा है क्या, नॉवेल दे रहा है, हाँ कोई फिल्म मैगजीन पकड़ा रहा है, हाँ बाहर से देखने में एक जैसे होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कितने इंटेलिजेंट, कितनी बुद्धिमत्ता से ये संस्था को स्थापना किया और हमको सब ऐसे ही कर्म में लगाया, जो ऐसे ही हम कर्म करते थे फिर संसार में कुछ ना कुछ करते थे और उससे में करबंधन में बांध जाते थे। से तात्पर्य के प्रारंभ से प्रभुपाद देखते यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोक अयम कर्मबंधन है। यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, तभी तुम कर्मबंधन से मुक्त हो जाओगे। यदि तुम इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करोगे फिर फंस जाओगे कर्मबंधन में, हाँ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर कर्मबंधन फंस जाओगे, 84 लाख जोनी में भटकते रहोगे, हैं। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु प्रभुपाद लगते प्रामाणिक गुरु की से उपदेश लेकर उनके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना है। कृत्रिम रूप में आर्टिफिशियली अब छोड़ के कर्म छोड़ के मैं पूरा निष्कर्म स्तर में आ गया, अभी श्री भजन करूंगा सब मान के वो नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है, है? एक व्यक्ति था बहुत खाना चाहता था, बहुत अच्छा, तो उसको अच्छा अच्छा खाने में शौकी था, बिजनेस करता था, बहुत पैसा पैसा बहुत कमता था, कमाता था, करोड़ रुपये लेके आता था। लेकिन उसका आदत था कि डेली क्या खाना, उसको कम से कम 20-25 सब्जी होना चाहिए, वेराइटी का सब्जी होना चाहिए, दाल वहाँ सब अच्छा से जूस वो सब अच्छा पूरा मील उसको चाहिए। वो शादी पत्नी पत्नी का दो तीन बच्चे हैं, पत्नी को पूरा लिस्ट दे के जाता था, आज ये मेनू है, ये सब सामान बन के रहना, मैं जब आऊँगा 2 बजे आऊँगा लंच के लिए, ये सब आइटम होना चाहिए। अब पत्नी बेचारी अपने सब बच्चों को देखेगी ना, इसके लिए इतना कहाँ से बनाए कि बच्चों को रेडी करेगा स्कूल जाएंगे तो कितना काम है, नहीं कर पाती थी वो डेली, एक बस 4-5 आइटम बना के रखे थे बस। बोलते क्या है तुम सुनता नहीं, तुम समझ नहीं कि मैं डेली बोल रहा हूँ, तुम यदि ऐसे करोगे ना मैं संन्यास लेके चले जाऊँ, घर बार छोड़ के चले जाऊँगा, तुम ही संभालना सब, हैं तुम घर को संभालना, बच्चों को संभालना, मैं जाओ चले जाऊँगा संन्यास लेकर छोड़ जाऊँगा। आगे आप देखा रहता हूँ 2-3 गाँव के आगे एक आश्रम था, उसमें एक बाबा रहता था, बोला उसके पास जाके संन्यास ले लूँगा। तो जानते हैं चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भी जाके संन्यास ले लिया, किससे, केशव भारती से, मैं भी जाके संन्यास ले लूँगा 2-3 गाँव के पास बाबा के पास। ये डर जाती थी अरे संन्यास लेंगे, बोल रहा चलो बच्चों को देखेंगे फिर, लेकिन ऐसे हो नहीं पाता, एक दिन डर के थोड़ा बड़ा था कुछ, फिर दूसरे दिन फिर नहीं होता। तो एक दिन वो जो बाबा के पास चले जाएगा बोलता ना, वो माधुकरी करते करते इनके दर्जे पर आ गया, आ गया तो हैं हरे कृष्ण, तो यही तो सुनते हैं प्रणाम किया, उनके पास जाके संन्यास ले लिया बोलता। तो इसलिए बहुत अच्छा प्लेट में सजा कर बहुत वेराइटी का सब है, सब्जी फब्जी सब्जी है सबने हरा सब्जी, चावल घी आटा सब लेके बहुत है, सब कुछ लेके पहुँचाया, पहुँच के रो, लेकिन प्रणाम करके रोने लगा। बोला बोले बेटी क्यों रो रही हो, क्या हुआ, ना आप मेरा पति को कभी संन्यास नहीं देना। बोला क्या क्या घटना मुझे तो बोलो, ना मेरा पति जो बोलता है संन्यास ले लेगा, आप ऐसे ही नहीं किसी लिए संन्यास लेगा बोलता है, तो बोला ऐसा ही है, जो खाने में बहुत शौकी है जिन्हें वेराइटी का, अब मैं तो 2-3 बच्चों के साथ में कहाँ से बना के इसको दूंगा, मैं बना के नहीं दे पा रहा हूँ, धमकी देती हूँ। बोला ऐसे खाने पीने में शौकी है संन्यास लेगा। बोला उसको बोलने के कि आज जब आएगा ना चिंता मत करना, मैं कभी इसको संन्यास नहीं दूंगा, ना लेने के लिए क्वालिफाइड है। आप क्या करना, आज जब आएंगे घर में, आज जो बोलेगा ना मैं संन्यास ले लूंगा, आज सिर्फ एक एक दाल साग बना के रख दे बस, आप बोलेगा तुम सन्यास लेने जोर जोर से चिल्लाएगा, बलाम से तुम बोले चल जाओ, झाड़ू पकड़ लेना, बोले गेट आउट, जाओ सन्यास, जाओ सन्यास लेना, मैं संभाल लूंगा घर, आज निकाल ही देना उसको घर से, और तुमको पूरा कन्विंस होना मैं कभी सन्यास नहीं, मैं सन्यास लेने के योग्य है। तो उसको तो सांस मिल गया, बोला भागवत ने उसको पढ़ा दिया पाठ। उस दिन तो केवल सिर्फ एक ही सब्जी साग बना के रख दिया, भात साग। तो वो तो डेली तो टेम्पर उठता था, आज बोला कि क्या ये क्या है, आके चिल्लाने लगा, सिर्फ साग बना के रख दिया तो समझ में नहीं आ रहा, मैं आज ही संन्यास ले लूंगा। अब जब तब तक झाड़ू उठा के लिए, बोला जा गेट आउट, आज ही संन्यास लो, घर पर बच्चों घर सब मैं संभाल लूंगी। है तो बोला अरे क्या हो गया, ये तो आज रुद्रमूर्ति चंडी कैसे बन गई आज, और बोल तो दिया मैं संन्यास लूंगा, अब करेगा क्या, और वो तो बार बार झाड़ू लगे पर गेट आउट कर रहे। बोला कुछ नहीं लेना संचल, घर से कुछ भी तुम्हारा नहीं, वही पहन के जो पहना उसी को ले, बात गेट आउट। गांव के लोग भी देख रहे थे, बोले बोला जी बोला क्या करो, वैसे मुख मुंह चे करके वही कपड़ा पहन के गया, गया बाबा के पास, आश्रम में गया, बाबा तो सब जानता पहले से। बोला ठीक है बेटा, जो चलो उस दिन तो फास्टिंग कैसे रहा, सुबह 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 उठ के बाबा कहे चलो माधुकरी करने जाएंगे, माधुकरी करने जाऊंगे। बोला जैसे शर्म लग रहा है, बोले मैं मेरे पीछे पीछे चलो, मुँह को ऐसे ढांक के, ऐसे ढांक के ऐसे चल रहे तो वो चावल फाल को सिर्फ माँग के लाए माधुकरी के, आज के लागे बाबा लागे बस अपने बस थोड़ा राइस बनाया, वो इमली पत्ता थोड़ा तोड़ के चटनी बना दिया, साग बस भगवान को भोग लगा दिया, सर हाँ 100 ग्राम को भोग लगा, बस बोला आ जाओ, आओ बाबा आओ, हाँ बेटा आओ प्रसाद पाएंगे। जो बैठा पत्ता के पास में देखा राइस इमली चटनी, रोने लगा जोर जोर से, उसको रोना आया, वाह वाह ले आए, तुम सन्यास लेने आया है, हाँ तुमको खाने का अभी तक शौक नहीं है, तुम पत्नी को इतना परेशान क्यों कर रहा डेली, हाँ जाओ बेटा जाके मैं तुम बुला दूँ, पत्नी को कभी भी झंझट नहीं करना, हैं कभी कुछ नहीं बोलना, जो आराम से जो जो बना के देगी बस शांति रहना। और बाबा ने कहा कि मेरे पास आया तो तुमको मैं दीक्षा दे दिया, मंत्र दे दिया, अभी इसी को जपा करना, क्या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, एक माला दो माला तीन माला फिर चार माला से स्टार्ट करो भाई, और संतोष रहो, संतुष्ट सततन योगी। यदि तुम भक्ति योगी बनोगे तो क्या करना पड़ेगा, भगवान कहते संतुष्ट सततन योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय है कृष्ण की, कृष्ण के शरण नमः है, दृढ़ निश्चय मयोर्पित मनोबुद्धि यमद भक्त समय प्रिय है। तो इस प्रकार इसलिए कृत्रिम रूप में हम यदि ये श्लोक इसलिए कह रहा है कि हम कृत्रिम रूप में ऐसे नहीं करना चाहिए, अथाग्रे ऋषे, इसलिए ऋषे जो साधु संत पुरुष है ये प्रारंभ से किसको निष्कर्मक बनने के कर्म न करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, इसलिए प्रारंभ से व्यक्ति को वर्णाश्रम के आधार पर जो वर्ण जो आश्रम में हुए उसी आधार पर उसको कर्म करना जरूरी है, हैं कोई ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी का उचित कर्म उसको करना जरूरी है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरुहितम आचरण दास वतनी च गुरु सुदृढ़ सुहृद, गुरु को अपने सुहृद मित्र जानते हैं, गुरु के हित के लिए गुरु की प्रसन्नता के लिए किसको कर्म करना चाहिए, ब्रह्मचारी को। प्रभुपाद जी ने कहा है मैराथन के महीना आया है, मुझे प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, मुझे प्रसन्न करना चाहते हो किताब का वितरण करो। मैं प्रभुपाद ने कहे ये किताब वितरण करने से ही हम प्रसन्न कर सकते हैं प्रभुपाद जी, इसलिए सभी का एक काम है भाई, ये हमारा भक्ति की गुरु के माध्यम से की जाती है, गुरु प्रसन्न होने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, जस्य अप्रसादात नगति कुतो अपि है। तो इसलिए ब्रह्मचारी को भी एक किताब वितरण में भाग लेना चाहिए, है ना, लगे लेना की चाहिए नहीं सभी की, केवल ब्रह्मचारी गृहस्थ को भी गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा, है गुरु को भी कभी मैराथन महीने में सभी आश्रम किसी बन्ना आश्रम होता है सभी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी इसी में जोड़ रहे हैं, तन मन धन है। तो धन की सेवा नहीं कर पा, धन कर धन का कम से कम को स्पॉन्सर करे गीता है, उसको गीता स्पॉन्सर करना चाहिए तो कैसे भी है। तो इसी प्रकार सभी को अपने वर्ण आश्रम के आधार पर कर्म करना जरूरी है। गृहस्थ को भी कर्म करना है, ब्रह्मचर्य को भी कर्म करना है। हैं वानप्रस्थी अन्य युग में वन में चले जाते थे, जंगल में, कलि युग में कोई जंगल नहीं है, फल कहीं मिलने वाला नहीं कि स्वच्छ जल में पीने के लिए नहीं मिलने वाला है। यदि हिमाचल में चले जाएंगे बहुत एप्पल गार्डन है, लेकिन वो एप्पल गार्डन के कोई मालिक होता है तुम तो घुसने नहीं देगा, एक एप्पल तोड़ने नहीं देगा है? तो आपको क्या करेगा ऐसे कलि युग में संन्यास। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी गुरु महाराज बहुत सोच के, इसलिए मठ की सिस्टम, पहले मठ सिस्टम नहीं था, आश्रम में रहना मठ में रहना ये सब शुरू किया। कौन से शुरू किया? भक्ति सरस्वती ठाकुर वर्णाश्रम सिस्टम शुभारंभ किए। चार वर्ण चार आश्रम, ब्राह्मण दीक्षा देना, ब्राह्मण बनाना, भागवत सब ये सब भक्ति सरस्वती ठाकुर स्टार्ट किए। तो इसीलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर के लिए कलि युग में वानप्रस्थी भी कहाँ रहेंगे, ये मंदिर में ही रहेंगे, ये मंदिर ही यही वृंदावन है, परिवेश है, इसके रहकर यही पंच महासाधन करेंगे। तो सभी आएंगे, वानप्रस्थी भी, सन्यासी भी। सन्यासी भी कहाँ घूम रहे? इस्कन में, इस्कन के अंदर ही घूम रहे हैं, इस्कन मंदिर में, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे तीसरा मंदिर बाहर नहीं जाते, इस्कन मंदिर में घूमते प्रचार करते बस हैं। तो लेकिन सब गुरु आदेश से होना चाहिए, प्रभुपाद जी के आदेश में। यदि हम ऐसे ही कर्म में लगे रहेंगे सदा, अवश्य कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे। हैं जब तक संपूर्ण विरक्ति नहीं आया तुम कर्म को त्यागना नहीं चाहिए है, कर्म करना अनिवार्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज है, उसे इमीडिएटली नहीं, भगवान ने पूरा अर्जुन को सिखाया सब कुछ, कर्म जो है सब सिखाने के बाद तो अंतिम में कहे माम एकं शरणं व्रज, बन के भी करेगा क्या? मेरे बात सुनो है, मेरे शरण में आओ तो कृष्ण कहे क्या कहे, शुरू से जो कहे थे वही कहने के, बोले युद्ध करना है युद्ध करेगा कि नहीं, बोले हाँ करी सी वचन तब हाँ करूंगा, अभी अभी समझ गया है। इसलिए कर्म गुरु के निर्देशन में कर्म, सदगुरु के निर्देशन, जैसे जानते हैं किसका कैसा नेचर है, कौन किस काम करने में फिट है, तो उसी का जब कर्म में इसको लगा देते हैं फिर वो प्रसन्न रहता है। ऐसे कर्म भी करता रहता और मुख में क्या करता, भगवान के नाम भी लेते रहता है। मुख में नाम लेना नहीं छोड़ो है, मामेनु स्मरण युद्ध, मेरा सदा स्मरण करो, मेरे संकीर्तन नाम कीर्तन करो, साथ साथ कुछ है कर्म भी करना। अब जो भी स्कन में है सभी को मनी की साधना करना जरूरी है, है? सभी लोग को मॉर्निंग साधना, पाप नहीं कि मैराथन कर रहे थे हमको साधना का जरूरत नहीं, मैराथन करने पर भी सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना पड़ता है, सोलोमाला जप करना पड़ेगा है, भागवत कक्षा हाँ चाहे शॉर्ट हो चाहे सब ये सब कंप्लीट करके फिर ये साधना भी प्रभुपाद जी ने दिया है। तो इसी प्रकार हम यदि केवल श्रील प्रभुपाद जी की जो मार्ग हमको दर्शाए तो उसको फॉलो करते रहेंगे, अवश्य एक दिन हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, भगवत धाम जाने में योग्य बन जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे है। एक तात्पर्य बड़ा है, अथवा पुंगी दिवस दिजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सह सुनिश्चित धर्म से संसिद्धि हरितोषण, इसी वर्णाश्रम में रहकर हरि को प्रसन्न करना ही जीवन का लक्ष्य बना है। ओके समय बहुत हो गया, कोई प्रश्न तो है नहीं, सबको महाप्रसाद। गोविंद याद आ गया।